अब अगली हदीस पे चलते हैं। खोल लीजिए किताबों को, हदीस नंबर 3 को हम पढ़ेंगे। अब इस हदीस के साथ तवील रिवायत चुके हैं तो इसका हम कुछ सिलेक्टेड हिस्सा आपसे पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं करूंगी इस तरह से कि लफ्जी तर्जमा रखूंगी। अगर आप चाहें तो हम बुक से मुहावरा पढ़ सकते हैं,
जी
बट आई थिंक सो कि उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब इस हदीस के साथ साथ मैं इंशाल्लाह इसके लफ्जी तर्जमे को आपके साथ रखूंगी। अन आयशा तो उम्मिल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हा कालत, आयशा रदी अल्लाह अन्हा जो मोमिनों की मां थी और अल्लाह उनसे राजी हुआ, उन्होंने रिवायत किया, अव्वल माबूदी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल-वहशी, सबसे पहली चीज जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आना शुरू हुई वो क्या थी? अर-रुया सालिहतु, सच्चे ख्वाब। यहाँ लफ्ज़ सालिहा का लफ्ज़ आया है सच्चे के मानों में। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की जो इब्तदा थी वो सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुई थी, फिन नौमी, रात के वक्त नींद के अंदर, यानी ख्वाब में आप जो चीज़ देखते थे वो बिल्कुल वही होने लगती थी। फकाना, बस हो जाता, ला जरा रोया, नहीं देखा तो वो ख्वाब मगर, इल्ला मगर, जात हो जाता, मिसलमा फलक सुबही, सुबह के फूटते ही। यानी पहला आपके ऊपर जो असर हमें दिखता है वो क्या कि अभी वही नहीं आई थी इकरा बिस्मी वाली, लेकिन आपको सच्चे ख्वाब आते थे, रात को जो ख्वाब में देखते थे वही सुबह में होने लगता था। तो आप पहली चीज इसके नाते से नोट कीजिए कि नबी सल्लम की नबूवत की अलामतों में पहली चीज क्या थी? सच्चे ख्वाब आना। और साथ ही अगर इस पर हम बात करते जाएं तो आज भी आपकी एक और हदीस के मुताबिक सच्चे ख्वाब नबूवत के 36 या 46 यानी नबूवत का एक बड़ा हिस्सा है। यानी बुशरा, सच्चे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, 46 पार्ट है। यानी अगर आज किसी को सच्चा ख्वाब आता है तो गोया के नबूवत का 46 पार्ट उसको मिल गया। और ये अल्लाह की तरफ से होता है, जितना इंसान सच्चा होने लगता है उतना अल्लाह ताला उसके ख्वाबों को भी सच्चा करने लगते हैं। फिर दूसरी बात है, जो रात को देखते वही रात को हो जाता। फिर दूसरा आपके ऊपर जो अमल हुआ वो क्या? सुम हुब्बिब इलल खलाओ, फिर आपको तन्हाई अच्छी लगने लगी। ये आपके ऊपर भी होना चाहिए सर। अल्लाह के नबी के तो दिल पे पहली दफा वही आ रही थी, तो हम सब तो अल्लाह की वही को जज्ब कर रहे हैं ना कुरान की क्लास में। अब अगर हम खुलासे कुरान सुनते हैं या हम तफसीर की क्लासेस में जाते हैं तो हर जगह हम भी तो वही वही अक्स कर रहे होते हैं। तो गोया के आपको तन्हाई अच्छी लगने लगती थी। फकान पस हो गए यखल बिगार हिराइन, तन्हा रहने गार में, गारे हिरा में, यानी आप गारे हिरा में जाते और वहां खलबत इख्तियार फरमाते। जाके करना क्या होता था? फयतखन्नसु फीही, फिर वो उसमें जाकर गुनाहों को छोड़कर इबादत में मगन हो जाते। ये जो लफ्ज है ना फयतखन्नसु फीही, तो ये कुरान पाक में भी आता है, याद है किसी को? बड़ी मारूफ सूरत है, चले लोग मगरिब के बाद पढ़ते हैं अमूमन। सूरत वाकया में अलल हिंसिल अजीम, हिंस का लफ्ज जो आता है वो कबीरा गुनाह के लिए आता है। तो यतखन्नस उसके अंदर जब ये फॉर्म आ गई तो मतलब क्या हुआ कि गुनाहों को छोड़ना। तो जब गुनाहों को छोड़ा जाता है तो उस वक्त फिर इंसान इबादत में मसरूफ होता है। मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए थे और वहां जाकर अकेले में रहते। वहुवल ताबुद, जो रावी है उनका एक इजाफा है कि इससे मतलब यह है कि फिर वो उसमें इबादत करने लग जाते, कि वो इबादत में मसरूफ हो जाते थे। अल्लयाली, रातों को, जवातिल अददी, जवातिल अददी का मानी है अदद वालियां। मुराद के अदद वालियों से कई एक, यानी कई कई रातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में रहते और वहां जाकर फिर इबादत करते थे। कबल यंस या इलाही ही, यहाँ तक कि वो वापस आते अपने घर वालों के पास। मतलब ये इस जुमले का क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से तन्हाई पसंद हो गए कि आप कई कई रातों तक गारे हिरा में रहते और उसके बाद फिर घर वापस आते। वया तज़व्वदुलिज़ालिका, फिर उसी तरह से फिर ज़ादेरा ले जाते, यानी हज़रत हतीजा फिर उनको ज़ादेरा या कुछ जैसे आप कह सकते हैं कि खुश खाना देती। और ये चीज़ हम पहले से जानते हैं कि आपको जौ और सत्तू साथ दे दिया करती थी। कितने सब्र वाली बीवी थी। आप देखेंगे कि नबी सल्लम के अहदीस को पढ़ते हुए हम एक और चीज़ भी बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे, और ख़ास तौर पे हम औरतें ख़वातीन होने के नाते से, और वो है आपकी बीवियों का किरदार। अब यहाँ से बल्कि इस हदीस में पढ़ेंगे कि हज़रत खदीजा की इतनी शान क्यों है कि एक मर्द, आप सोचिए कि बीवी क्या पसंद करती है कि उसका मर्द कमाए खाए, दावतें हों, मज़े आए। अभी कितना सेहतमंद हेल्दी मर्द और बिल्कुल यंग एज है और हजरत खदीजा नबी सल्लम से 15 साल बड़ी थी। इसके बावजूद जब नबी सल्लम पे नबूवत के असरात हुए तो जाहरी बात है कि जब गारे हिरा में जाके बैठते होंगे तो कारोबार तो नहीं करते थे ना, बकरियां तो नहीं चराते थे ना, बिजनेस को तो नहीं देख सकते थे। आमतौर पर ऐसे वक्त में फिर बीवियों का मिजाज कितना बिगड़ जाता है, और अल्लाह रहम करे जुबान की भी तेजी हो तो कहीं उनको ताने देंगी, कभी उनको नखट्टू कहेंगी, कभी आराम तलब कहेंगी। हजरत खदीजा ऐसी नहीं थी, बल्कि वह यतज़व्वदु लिज़ालिका, ज्यादा राह दे दिया करती थी और खाना देती थी। सुम्म यरजुला खदीजा, फिर आप इसके बाद वापस खदीजा के पास आ जाते। फयतज़व्वदु लिमिस्लिहा, मतलब ये सिलसिला चलता रहा। हत्ता जाउल हक्कु, यहाँ तक कि आपके पास हक आ गया। यहाँ हक से क्या मुराद है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, यानी वही आ गई। वहू वफी गारी हिराई, और वो गारे हिरा में थे। क्या हुआ था? फजाहुल मलक, आया आपके पास फरिश्ता। फकाला, फिर उसने कहा, इकरा पढ़ो। काला फरमाया, ये काला किसने कहा? नबी सल्लम ने कहा, मा अना बिकारीन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि नबी सल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो जब जिब्राइल ने कहा कि पढ़िए तो कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। काला, फिर फरमाया, फ अखजनी, फिर उसने मुझे पकड़ा। फ फिर क्या फरमाया? फ गत्तनी हत्ता बलग मिन्निल जहद, फिर उसने मुझे भेजा यहां तक कि मुझे तकलीफ हुई। यानी फरिश्ते ने आपको इस तरह से गत्तनी, यानी जिस तरह भेजना, झंझोड़ना, जैसे किसी को कोई बहुत जोर से हक देता है, इसी तरह फरिश्ते ने आपको इस तरह से झंझोड़ा और दोबारा फिर ऐसा किया। सुम अरसलनी, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। फकाल इकरा, फिर कहा पढ़ो। कुल तुम नबी कारीन, मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फखजनी, फिर उसने मुझको पकड़ा। फगत तनी सानिया, फिर मुझे दूसरी बार झंझोड़ा। हत बलग मिनिल जहद, यहां तक कि मुझको मुशक्कत पड़ी, यानी मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। सुम अरसलनी, फिर उसने मुझको छोड़ दिया। फकाला, फिर फरमाया, इकरा पढ़ो। फकुल तो, फिर मैंने कहा, मा नबी कारीन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फखजनी, फिर उसने मुझको पकड़ा। फगत्तनी, फिर मुझको झंझोड़ा। अस्सालिसता, तीसरी बार। सुम अरसलनी, फिर उसने मुझको छोड़ दिया। फकाला, फिर कहा, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। पहली वही पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। पढ़ो और बेशक तेरा रब बड़ी इज्जत वाला है। अब ये वही, यानी इससे आगे की दो और आयतें भी आती हैं इसमें, यानी ये वही नाजिल हो चुकी थी। यहां थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बार बार क्यों झगड़ा। इसके बारे में मुहद्दिसीन बहुत सारी बातें लिखते हैं। नंबर एक, वही का बोझ उठाने के लिए तैयार किया। आप देखिए कि अमूमन होता क्या है कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो बड़े लेजी फील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर थोड़ा दिन जरा भागते दौड़ते हैं, काम करते हैं जिस दिन, तो उस दिन तो बहुत ही एनर्जी फील करते हैं। और अगर हम काम ना करें तो आधा दिन बिस्तर पर ढीले ढाले गुजारते हैं और वो सारा ही दिन सुस्ती में गुजर जाता है। तो आपके अंदर से सुस्ती को निकालने के लिए एक वजह कही, क्योंकि कुरान का बोझ तो उठाना ही था। आखिर सूरत अल अहज़ाब के आखिर में आता है कि हमने इस अमानत को पहाड़ों पर पेश किया, फबईना, उन्होंने इनकार कर दिया, फबईना, हम नहीं कर सकते। सूरत हशर के आखिर में आता है कि पहाड़ों पर इसको डालते तो वो इसके बोझ से जाते। तो गोया के वही का बोझ उठाने के लिए तैयार किया। दूसरी रीजन कहते हैं कि बशरी ख्वाहिशात को आपके अंदर से निकालने के लिए, यानी हर इंसान के अंदर, उसकी तबीयत के अंदर, बशरियत की वजह से कुछ जज्बे ऐसे होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स के अंदर खैर भी डाली और शर भी डाली है, तो फरमाया कि इस वजह से। तीसरी वजह कहते हैं मुहद्दिसीन के बात अंदर उतर जाए। आप देखिए, आप इसको इस तरह से महसूस कर सकती हैं कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, फिर वो आपकी बात नहीं सुनता, आप दूर से चीखती चिल्लाती हैं, फिर एकदम आप उसके पास जाती हैं, फिर आप उसको अपने गले से लगाती हैं। क्या कम्युनिकेशन होता? और ये बात अक्सर अपनी क्लासेस में आपको कहती रहती हूँ कि दूसरों को दूर से बैठ के चीखने चिल्लाने की बजाय उनके करीब जाके हाथ पकड़ के प्यार करके जितने सुकून से अपनी बात सुनाएंगे उतनी पहुंचेगी। तो इस वजह से एक चौथी वजह भी, और वो क्या है कि नूरानी मखलूक के असरात इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाए। देखिए, फरिश्ते नूर है ना, लेकिन उनके नूर और अल्लाह के नूर में क्या फर्क है? अल्लाह भी नूर है, अल्लाह नूर उस समावाती वल अर्थ, तो फरिश्ते भी नूरानी मखलूक हैं। फर्क क्या दोनों का? फरिश्तों का नूर क्रिएटेड है, अल्लाह का नूर अनक्रिएटेड है। अल्लाह अपनी जात से नूर है, लेकिन फरिश्तों का नूर ऐसे ही है कि जैसे ये बिजली या ट्यूबलाइट है या इसी तरह से कोई और लाइट है। तो फरिश्तों के अंदर जो नूरानियत थी वो नबी सल्लम के जिस्म में दाखिल करने के लिए। और वैसे भी आप देखिए कि किसी अच्छे इंसान का जो कुर्ब होता है ना, आपके अपने अंदर भी अच्छाई की आदत डाल देता है। आप घर में अकेले नमाज पढ़ते हैं, हो सकता है ढीली ढाली नमाज पढ़ें, लेकिन आप मस्जिद में आते हैं तो किसी को नमाज पढ़ते देखते हैं, वो बहुत अच्छी नमाज पढ़ता है, तो आप जब उसके साथ खड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे भी अच्छी पढ़नी है। एक असर होता है, अच्छे लोगों का असर होता है। और याद रखिए कि इल्म के लिए सिर्फ इंसान को किताब नहीं चाहिए होती, इल्म वालों का, अहले इल्म का कुर्ब भी चाहिए होता है, माहौल चाहिए होता है। यही क्लास अगर आप यहाँ लेने के बजाय घर में अकेले बैठ के अपनी कोच पे बड़े आराम से सोफे पे बैठ के लें, और तरह से लेंगे। और अगर आप उससे हटकर चार छह लोग अपने साथ बिठा के सुन रहे हैं तो और अच्छा सुनेंगे। क्लास रूम में आके बैठ के सुनते हैं तो ये और भी अच्छा होता है। ये इस वजह से थी। फिर इसी तरह से एक और वजह ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, और बशर की एक लिमिट होती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम इंसानों से एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए ऐसा किया, वल्लाहु आलम। क्योंकि हदीस में आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम लोगों से ज्यादा ताकत थी, जैसे जिस्मानी मर्दानगी की ताकत है तो जो आम दुनिया के मर्दों की ताकत होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे बहुत ज्यादा ताकत थी। तो गोया के अल्लाह के नबी के साथ ये सारा मामला ऐसे हुआ। खैर, अब वही मिल गई। यहां देखिए कि ये हिस्सा है वही का जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह में बदल दिया। लोग 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाते हैं, आपकी विलादत मनाते हैं, तो एक जुमला हर साल ही रबीउल अव्वल के लेक्चर्स में बोलती हूँ, वो यहाँ याद आ गया कि खुशी मनानी है, खुशी मनानी है तो उस दिन की मनाओ जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी थी। क्योंकि अगर लोगों के बकौल 12 रबीउल अव्वल को ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, अरब के घर का एक बच्चा, वही माहौल जो चारों तरफ था वही उनके घर का भी माहौल होगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज ने मुमताज किया और हमारे लिए उस्वा बनाया वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं बल्कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। वही उतरी, फराजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पस लौटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लेकर, किधर यरजुफू फुआदुहु, कांप रहा था दिल उनका। ये यरजुफू क्या है, जो कुरान पाक में भी आप पढ़ते हैं ना, राजिफा, क्यामत के नामों में से भी है। यानी अल्लाह के नबी पर ये कैफियत इस तरह से तारी हुई कि फरिश्ता तो चला गया ये बात कहकर, पहला एक्सपीरियंस था, और अकेला शख्स गार में, रात का वक्त है, और वहां से निकला और रमजान की भी रातें थी, तो अल्लाह के नबी जब पलटे तो आपका दिल धड़क रहा था। फदखल अला खदीजा बिन्त खुवैलद रदियल्लाहु अन्हा, फिर आप आए हजरत खदीजा बिन्त खुवैलद के पास रदियल्लाहु अन्हा। कौन थी, जो अल्लाह के नबी सल्लम की पहली बीवी थी। नबी सल्लम की उम्र मुबारक जिस वक्त 25 साल की थी तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल की थी। दो बार पहले से शादीशुदा थी और चार बच्चों की माँ थी, यानी तीन या चार बच्चे आपके अल्लाह के नबी से पहले भी थे। खूबसूरत थी, आला नसब की थी, मक्का के बड़े बड़े लोग उनसे शादी के ख्वाहिशमंद भी थे, लेकिन उन्होंने जब अल्लाह के नबी के साथ कारोबार किया, यानी आपको एक मर्द की जरूरत थी जो आपका कारोबार देखे। एक गुलाम था इनका जिसका नाम मैसरा था, वो अमूमन आपकी तिजारत के सामान को बाहर लेके जाता और आता, और उस दौर में याद रखिए कि अरब में तो कुछ था ही नहीं, तो बस वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करते थे, मुल्क शाम जाते वहां से चीजें खरीद लाते तो उसको बेचते, इसी तरह दूसरी जगहों से लाते। तो जब नबी सल्लम की शोहरत हुई कि आप बड़े सच्चे हैं, सादिक और अमीन हैं, तो फिर इन्होंने अल्लाह के नबी को काम दिया कि आप जाइए और यानी मेरा सामान बेचे। आम लोग जब आए तो उनके पास जितना नफा था नबी सल्लम उससे दुगना नफा लेकर आए। खदीजा ने पूछा कि ये दुगना कैसे हो गया, तो कहा कि जो पैसे आपने दिए थे वहां से सामान तिजारत खरीदने के लिए, मैं वो पैसों की शक्ल में वहां नहीं लेके गया, मैंने उससे यहां की कुछ चीजें खरीद ली जो मुझे पता था कि वहां महंगी बिक जाएंगी, तो वहां जाके पहले वो चीजें बेची तो वहां नफा हासिल हुआ, फिर उस पैसे से मैंने और चीजें खरीद के यहां लाकर उसको बेची तो दुगना हो गया। अब आप बताइए कि ये कितनी समझदारी की चीज थी, और अगर अल्लाह के नबी यही जहन लेकर कैरियर बिल्ड करते तो माशाल्लाह फिर देखिए करोड़पति और अरबपति होते ना, मिलियनेरियन होते। एन पीक का वक्त जब किसी इंसान की सारी सलाहियतें अपने माल कमाने पे लग सकती हैं, 40 साल की उम्र, उस वक्त अल्लाह का नबी अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए अपनी वो सारी सलाहियतें तज करके अल्लाह के दीन पे ले आता है। आपका ख्याल है कि अल्लाह अपने नबी की इस कोशिश को कबूल नहीं करेगा? तो लिहाजा अल्लाह ने तोहफे के तौर पर खदीजा निकाह में दे दी। ठीक है, अच्छा अक्सर हम लोग कहते हैं खदीजा, हमारा पाकिस्तानी प्रोनाउंसिएशन के फलां का नाम के खदीजा, खदीजा खदाजा से लफ्ज होता है। तो हजरत खदीजा आप से आपकी शादी हो गई थी और आपके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बीवियां थी वो रश किया करती थी, और ये वो बीवी थी कि जिनकी जौजियत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और दूसरी शादी नहीं की। 25 साल एक मर्द, यानी 25 साल की उम्र से होकर 50 साल की उम्र का हो जाता है और अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ वक्त गुजार देता है। अगर खुदा न खास्ता उन पर कोई जिनसी जुनून होता, औरतों से शादियों का शौक होता, तो फिर इस वक्त कैसे निपटा? 50 साल की उम्र तक सिर्फ एक ही औरत के साथ रहे हैं और वो खदीजा थी। अगली हजरत खदीजा की खूबी क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद बीवी हैं कि जिनसे आपको औलाद हासिल हुई। सिर्फ एक बेटा मारिया किप्तिया के बतन से हुआ, लेकिन वो भी बचपन में फौत हो गया। फिर खदीजा की खूबी क्या थी? जब हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे किसी जिंदा बीवी से हसद और जेलसी नहीं होती थी जो मुझे खदीजा से होती थी। अल्लाह के नबी जब गोश्त बांटते या कोई ज़बह करते जानवर, तो कहते जाओ खदीजा की दोस्तों को देकर आओ। मैं सोचती थी कि आप उस बुढ़िया को नहीं भूलते। इनका दहन चौड़ा था, सुर्ख होंठ थे, हजरत खदीजा के चेहरा गोरा था। तो कहती हैं कि मैंने कहा कि आप वो चौड़े दहन वाली औरत को भूलते नहीं है? तो फिर आपने कहा कि आयशा मैं खदीजा को कैसे भूलूं कि जब लोग मुझे पत्थर मारते थे तो खदीजा अपने दुपट्टे की धजियां बनाकर मेरे जख्मों पे फाहे लगाती थी, और खदीजा वो थी जिसने अपनी सारी दौलत मेरे सामने रख दी कि मैं इसको जिस तरह से इस्तेमाल करूं मैं करूं। आपको पता कि मक्का के दौर के शुरू के दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत की बात की, वो तो इतना लोगों ने नोटिस ही नहीं लिया, 4-5 साल तो चलते ही गए थे ऐसे ही। असल लोगों के कान लगे थे जब हजरत उमर और हजरत हमजा मुसलमान हो गए, उसके बाद मुकाते बाइकॉट, ये नहीं 3 साल इधर शाबे अभी तालिब में बिठा दिया, कारोबार नहीं करते थे लोग, बाहर से जब कोई काफला आता सब दूसरे कबीले वाले खरीद लेते और मुसलमान जो थे उस दौर के उनको वो खरीदने ना देते, रिश्ते नाते कट गए। कभी आप सोचे कि इन हालात में अल्लाह के नबी के खर्चे कहां से चलते थे? वो खदीजा की दौलत थी। आप कहते हैं हम खाएंगे कहां से, हम करेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे कहां से, हम खाएंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, ये कहां से खा रहे हैं? अल्लाह दिलों में डालता है। मुझे किसी की बात बड़ी अच्छी लगी, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ रही है बच्ची, तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत दुनिया का इल्म दिया, यानी जरूरत नहीं है बताने की, यानी इतनी अच्छी पोस्ट पे कि आप सोचें तो आप रश करें कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। तो उसने जो शेयरिंग मेरे साथ की कि मुझे अब कुरान पढ़ के वो जो मजा आ रहा है ना, तो पढ़ाई तो मैंने जैसे तैसे पूरी कर ली है अब अल्हम्दुलिल्लाह, और जॉब्स भी ऑफर हो गई हैं, लेकिन मैं जिस भी जॉब की ट्राई पे गई हूँ मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा। ये वो है जो भी उनकी होता है, और 2-4 दिन जाके मैंने उसको रिजाइन दे दिया कि नहीं मुझे अपना कोर्स पूरा करना है किसी कोर्स में, और उसके मतलब पारे आखिर के चल रहे हैं। तो कहने लगी मैं छोड़ आई हूँ, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं अपना कोर्स नहीं कुर्बान करना चाहती इस वजह पर। मैंने कहा तुम ये बताओ कि तुमने जो पढ़ा है तुम उससे इस्लाम को क्या फायदा दे सकती हो, उसमें हम तुम्हारी मदद करते हैं, तुम इसमें कैरियर बना लो। इस्लाम को क्या नहीं चाहिए? क्या डॉक्टर्स नहीं इस्लाम को चाहिए, या लॉयर्स नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तो किस्से मकसद ये है कि जब हम इस गम में अपनी बच्चों को पालते हैं ना कि इनके कैरियर बन जाए, ये जॉबें कर लें, कल ये हो गया वो हो गया, तो फिर अल्लाह डाल देता मुश्किल में। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने अपना कैरियर दौ पर डाल दिया तो मुझे आपको क्या मसला? हमने कौन सी कोई 1 से 2 रोटियां ज्यादा खानी है या 4 कपड़े पहनने हैं? जरूरियात पे रहें तो अल्लाह ताला मदद करता है। हजरत खदीजा ने यूं आपके ऊपर दौलत निछावर की थी। और हजरत खदीजा की अगली वसफ क्या है? इस्लाम के पैगाम की पहली अलम्बरदार, यानी आप ये नोट कीजिएगा कि इस्लाम का पैगाम सबसे पहले एक औरत को मिला। ये औरत की शान है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने औरत को इज्जत भी दी और औरत को मुकाम भी दिया और उसके लिए ये सारी बातें भी दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये हालत देखी तब जाहरी बात है कि बीवी थी। अब आप जरा अपने ऊपर लेकर सोचें, इमेजिन कीजिए, शौहर बाहर से आए हैं, खदीजा के पास आ गए हैं, क्या हुआ जरा टेक्स्ट पे नजर कीजिएगा। फकाला, फिर आपने फरमाया जम्मेलूनी जम्मेलूनी, मुझे चादर उड़ा दो मुझे चादर उड़ा दो। फजम्मेलूहू, पस उनको चादर उड़ाई गई। ये वही लफ्ज है जो या अय्युहल मुज़म्मिल में है, चादर को कहते हैं जमल और मुद्दसर दोनों। حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، یہاں تک کہ چلا گیا آپ سے خوف. فَقَالَ لِخَدِيجَةَ، پھر آپ نے کہا خدیجہ سے، فَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ، اور ان کو خبر دی، بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، بے شک مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. فقالت، پس کہنے لگی، خدیجہ تو، خدیجہ رضی اللہ عنہ، کلا، ہرگز نہیں، یعنی مطلب یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز نہیں ہوگا، واللہ ما یحزیکا، اللہ کی قسم وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی، یعنی میں قسم کھاتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، وتحمل الکلا، اور آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں، یعنی ضرورت مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، جان سے بھی اور مال سے بھی، اور وتکسب المعدوم، اور آپ کماتے ہیں معدوم کے لیے، معدوم ہے عدم سے، اور عدم کہتے ہیں وہ چیز جو نہ ہو، تو گویا کہ آپ نے کہا کہ جو ہے ہی نہیں ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں. مقصد ساری بات کا کیا ہے کہ جو لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے آپ ان کے کام کر دیتے ہیں، درماندہ پسے ہوئے لوگ، وَتَقْرِي الدَّعِفَ، اور اسی طرح سے آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقَّ، اور اسی طرح سے آپ فقیر اور مسکین ہیں، یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا محتاج، ان کو کما کر کھلاتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. اور یہ جو آخری لفظ تھا اس میں جب ہم نے پڑھا نوائب، یہ نائبت ان کی جمع ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر مشکل الفاظ میں لکھ لیجئے، نوائب الحق، نوائب نائبت ان کی جمع ہے. نوائب کہتے ہیں مشکلات کو، یعنی حق کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں آپ اس کو برداشت کرتے ہیں. اچھا، اب اتنی سی بات پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ پھر اگلا مرحلہ آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کا کردار آپ اپنے اوپر لیجئے. آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی اور مطمئن ہے کہ ابھی شوہر آئیں گے اور بات ہو جائے گی ان سے، ٹھیک ہے، کھانا گرم ہے. اب اسی قسم کی کچھ ہیجانی کیفیت میں شوہر آتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اتنا ہی تحمل اور صبر کا معاملہ کریں گے جو حضرت خدیجہ کا تھا؟ میرے لیے ہم تو شروع ہو جائیں گے، کیا ہوا کیا ہوا، وہ چھوڑیں ہم پریشان ہو جائیں گے، وہ کہتے پہلے تم تو خود کو سنبھالو. پینک نہیں ہوئی، یہ جملہ نوٹ کرنے کا، کہ اچھی بیویاں شوہروں کے باہر آتے ہی پہلے ان کی حالت کو دیکھتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، نہ کہ ان کو اپنی ڈال دیتی ہیں. ایک اور طرح کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، شوہر بیچارہ کس حال میں آئے، چاہے اس کو واش روم میں جانا ہو، اور یہ شکایتوں کے انبار شروع ہو جاتی ہیں. پہلے تو ماں کے، ساس کے ماشاءاللہ، اور نندوں کے، اور پھر بچوں کے شکوے، اور یا ٹوٹی لیک کر رہی ہے اور باتھ روم میں فلش کلک کر رہے اور دس اینڈ دیٹ. تو اچھی بیویاں آتے ہی شوہروں کو اپنے دکھ نہیں سناتی بلکہ ان کے سنتی ہیں. پھر اگلی چیز اس میں ایک اور دیکھیے کہ حضرت خدیجہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہیاں، یہ بھی ہمارے لیے قابل غور نقطہ ہے کہ کسی انسان کی اصل گواہی اس کے گھر والے دے سکتے ہیں. باہر تو بہت اچھے اخلاق ہوتا ہے لوگوں کا، بہت ماشاءاللہ اچھے نائس ڈیسنٹ انکل اور بردر، گھر آتے ہی تیوریاں بھی چڑھ جاتی ہیں، زبان بھی اونچی ہوتی ہے، کیوں کہ روب ذرا ڈلے گا ورنہ یہ مجھ سے ڈرے گی نہیں. تو اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو اب ہم سب اپنے اوپر لیں، اب ہم تو عورتیں ہیں، برادرز ہیں، تو وہ سوچ لیں کہ ہماری بیویاں ہمارے بارے میں یہ ساری باتوں کی گواہی دے سکتی ہیں. دیکھیے سچ منہ پہ آ جاتا ہے نا، اور آپ بھی اپنے اوپر لے کے سوچئے کہ کیا ہمارے شوہر ہمارے بارے میں یہ ساری گواہیاں کسی موقع پہ دے سکتے ہیں. ہمارے اندر خوبی کوئی نہیں ہوتی، لیکن چاہتے ہم یہی ہیں کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ ہماری ہر طرح سے تعریف ہی کرتے دکھے. بہرحال اب عقل مندی دیکھیے حضرت خدیجہ کی، پہلے تو خود تسلیاں دیں، لیکن سمجھ گئیں کہ یہ بات کوئی انیوژل ہے، یہ میری تسلی سے پوری نہیں ہوگی، لہذا فن تلقت بھی خدیجہ تو حت اتت بھی ورقت ابن نوفل بن اسد بن عبد العزا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ لے گئیں آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس، جو کہ ابن ام خدیجہ تھا، خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے. وکان عمران تنصر فی الجاہلیتی، یہ وہ تھے جو جاہلیت میں نصرانی بن چکے تھے. لفظ دیکھیے تنصرہ، چھوٹا سا لفظ ہے نا، نصرہ سے، نصارہ کا لفظ بھی اسی سے، تنصرہ کہتے ہیں اس نے نصرانیت قبول کر لی، एक लफ्ज का तर्जमा एक जुमले में, यानी जाहिलियत के दौर में ये नसरानी बन चुके थे। यहाँ से एक और बात पता चलती है कि ईसाई मिशनरीज उस वक्त भी काम कर रही थी, क्योंकि मक्का और मदीना के इर्द गिर्द उस वक्त ईसाई लोग तो नहीं थे, तो गोया के उनकी तबलीगी कोशिशों की वजह से इस तरह से ये मामला हुआ। खैर, वकान यक्तुबुल किताब अल इब्रानिश, और वो इब्रानी जुबान लिखा करते थे। यहाँ जो अल किताब का लफ्ज है, तहरीर के मानों में हिब्रू लैंग्वेज भी ये लिख सकते थे, और साथ ही साथ वकान यक्तुबुल किताब अल इब्रानी फयक्तुब मिनल इंजील माशा अल्लाह ए यक्तुबा, और वो लिखा करते थे इंजील में से वो जो अल्लाह ने चाहा कि वो लिखें। वकान शैहन कबीरन, और वो बूढ़े भी थे, कद अमिया, जो नाबीना हो गए। यहाँ नोट करने का एक नुक्ता आ गया कि वरका बिन नौफल उस दौर का जो ईसाइत का मजहब, जो ठीक मजहब था उस वक्त के एतबार से, वो मान चुके थे। इससे पता चलता है कि वो फितरत पर थे, ठीक है। और दूसरी बात देखिए कि नाबीना होने के बावजूद भी लिखा करते थे, ये असल बात है। हम बाज़ आंखें रखते हुए भी इसका इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं कर पाते। बहरहाल पढ़े लिखे, तो यहाँ से हजरत खदीजा का खानदान भी दिखता है कि पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती थी और मारूफ लोगों से इनका ताल्लुक था, यानी आला नसब की थी। खैर, अब वहां जाके ले गई। फकालत खदीजा तो, हजरत खदीजा ने उनसे कहा, यपना अम्मी, ए मेरे चचा के बेटे, इस्म मिन इब्नी अखी का, सुनो अपने भाई के बेटे की बात। ये भी जुमला नोट करने के काबिल है कि नबी सल्लम को उनके भाई का बेटा कहा, जैसे हम अपने कहते हैं भाई अपने बच्चे की बात सुनो, भतीजे की बात सुनो, यानी कुर्बत पैदा करने के लिए, वरना ये नहीं है कि आप वाकई उनके भाई के बेटे थे। फ़काल लहु वरक़ा तो, कहा आपसे वरक़ा ने, यब्न अखी, ए मेरे भाई के बेटे, माज़ा तरा, क्या तू देखता है। फ़अख़बरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर मारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खबर दी उस चीज की जो आपने देखा। फकाल लहु वरक़तु, तो कहा आपसे वरक़ा ने, हाज़न नामूस अल्लज़ी नज़ल्लल्लाहु अला मूसा, ये है वो नामूस जो अल्लाह ने भेजा था मूसा की तरफ। लफ्ज नामूस नोट कर लीजिए, नामूस नमसा से है, नून मीम सीन, नमस कहते हैं सरगोशी करने को, तो नामूस कहते हैं बादशाह के राजदार को, मुकर्रब, मारूद इधर जिब्राइल है। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत मुमासलत है नामूस और जासूस में। नामूस कहते हैं खैर के राजदार को, और जासूस कहते हैं शर के राजदार को, के जो शर के मामले में राज रखे। गोया कि ये हजरत जिब्राइल के बारे में उनका एक लकब था, आपके पास तो वही फरिश्ता आया जो कि मूसा पे आया था। या लैतनी, ए काश, फीहा जजान, मैं उस वक्त ताकतवर होता। ये जो जजान लफ्ज है ना, ये बछड़े को कहते हैं, गाय का या भैंस का बच्चा, मुराद है कि ताकतवर होता, जरा मेरे अंदर कुछ ताकत होती। लई तनी अखून हैयन, काश मैं उस वक्त जिंदा होता। इस युखरिजु का कौम का, जब निकाल देगी आपको आपकी कौम। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हैरत से पूछा अल्लाह के नबी सल्लम ने, अब मुखरिजी यहुम, क्या वो मुझे निकाल देंगे। कितनी हैरत हुई उनको कि ये तो मेरी सारी दोस्त हैं, ये तो सारे मेरे प्यार करने वाले, क्या मुझे वो मेरे कौम से निकाल देंगे। देखिए, अल्लाह की बात मानने से पहले जब हम लोगों की बातें मानते हैं ना, वक्त और सोसाइटी के रिवाज पे चलते हैं, तो हमें भी गुमान होता है कि सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो मुझे भाभी कहते हैं, वो तो मुझे बहन बनाते हैं, और वो तो मेरे से बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि आप भी तो उनके लिए आधी आधी रात जागकर उनकी सालगिरह और मेहंदी और उपटनों के खाने पका के देती हैं, तो वो क्यों ना करें। अल्लाह के नबी को हैरत थी कि मेरे साथ इतनी मोहब्बत करने वाले लोग क्या मुझे निकाल देंगे इस शहर से। काला नाम, तो वरका ने कहा, हाँ ऐसे ही होता है। लम याति रजुलुन कत्तुन बिमिस्ली माजी तभी ही, आज तक नहीं आया कोई शख्स उस चीज के साथ जो आपके पास आई है, इल्ला ऊदिया, इस लफ्ज को हाईलाइट कर लीजिए, ऊदिया, मगर वो दुश्मनी किया गया। ऊदिया का लफ्ज अदावत वाला ही लफ्ज है कि उसके साथ अदावत की गई, दुश्मनी की गई। इन युद्ध रिकनी यौमुका, अगर पाले मुझको तेरा वो दिन, यानी जिस दिन तेरी कौम तेरी दुश्मन हो जाएगी और मैं उस दिन जिंदा रहा, अंसुर का नसरन मुअज़्ज़रा, तो मैं तेरी मदद करूंगा, बहुत ज्यादा मदद करना। मुअज़्ज़रा का लफ्ज अजरा से है, ये अजरा क्या लफ्ज है, आजार कहते हैं कमर को, कमर बंद को क्या कहते हैं उर्दू में, कमर बंद को आजार बंद कहते हैं ना, ये जिस्म का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, तो आजार से मुअज़्ज़रा के, उस वक्त मैं तुम्हारी पुश्त बनाई करता कि काश मैं उस वक्त जिंदा रहूं, और रहा तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तो क्या फिर वरका बिन नौफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये कौन थे, मुसलमान, सहाबी और अल्लाह के नबी पर ईमान लाने के साथ देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि आगे देखिए सुम्मलम यंशब वरकतु आई तो वफिया, मगर थोड़ा सा वक्त भी नहीं गुजरा था कि वरका फौत हो गए, वफतरुल वहयु और वही का सिलसिला रुक गया। अब यहां देखिए कि उनको मौका नहीं मिला कि अल्लाह के नबी के लिए ये सारा मामला कर सकते और हो जाता, लेकिन इसके बावजूद उनकी सिर्फ कहने से कोशिश से इनका दर्जा ईमान वालों में आ गया। तो अब देखिए कि अब इस एक हदीस में हमारे लिए जो सारी बातें थी, हम सब इसको अगर अपने ऊपर लेकर सोचे तो पहली वही का जो जोश होता है वो बहुत ही खूबसूरत भी होता है, और इसको जब हम देखेंगे तो हमें अपनी जिंदगी में भी इससे फायदा दिखेगा कि जब भी दीन का कोई नया काम आपकी जिंदगी में आए तो शुरू में मुश्किल तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अब आपके ऊपर मुश्किल है, कई नई चीजें साथ साथ चल रही हैं, ये हो रहा है, तो ऐसे वक्त में फिर अल्लाह के नबी की इन मुश्किलात को सामने रख लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके जहन को खोल देगा। अगली नशिस्त में हम हदीस नंबर 4 से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वक्त में भी बरकत दे, इल्म में भी और अमल में बरकत दे, और आजजी भी दे। ये ना हो कि हम इस इल्म को पाकर अब बहुत ही ज्यादा अपने आप को बड़े समझें और कहें कि अब तो हम वाकई आलिमा के दर्जे पे पहुंच गए हैं। जी इनका सवाल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे तो क्या इबादत थी, शरीयत तो आई नहीं। तो बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, हर बंदे की फितरत में अल्लाह की इबादत है। नबी सल्लम के पहले से लेकर हजरत आदम से लेकर आपके नबी बनने तक हर दौर में अल्लाह का वजूद, अल्लाह की इबादत, नमाज, रोजा, हज, ये सबका तस्वर मौजूद था। मक्का वाले कौन थे? मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपनी इबादत में मुशरिकाना तौर तरीके शामिल कर लिए थे। आपने सूरह तौबा में पढ़ा कि वो हज करते थे, सूरह अनफाल में पढ़ा सीटियां बजाते थे, तलबिया पढ़ते थे, लेकिन लब्बाई के आगे लफ्ज बनाते थे। तो लोगों ने उसमें अपने रंग डाल दिए थे, लेकिन इबादत का तस्वर उस दौर में भी मौजूद था। आज आप देखिए क्या हिंदू जोगी इबादत नहीं करते, वो क्या कुछ नाम है प्रार्थना करना और कुछ इस तरह की, तो इबादत का तसव्वुर हर दौर में रहा। लेकिन अंबिया कराम फितरत पे होते हैं तो वो वक्त के रिवाज पे नहीं, बल्कि वो अल्लाह ताला के साथ अपने मामले पे इबादत करते हैं। ठीक है, चलिए जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।